हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम लेक्चर 14। कल हमने पढ़ा कि किस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने वृंदावन के समस्त स्थानों की यात्रा की और उसके बाद श्रील रूप गोस्वामी को उन्होंने शिक्षा दी। बहुत ही सुंदर भक्ति की चैतन्य महाप्रभु ने श्रील रूप गोस्वामी को शिक्षा देते हुए भक्ति की तुलना एक कोमल लता से की और बताया कि इस लता को यदि आपको सुरक्षित रखना है तो श्रवण और कीर्तन के जल से सींचना है और बचाना है किसी शुद्ध भक्त की निंदा से, जो भी भक्त हैं उनकी निंदा से आपको बचाना है। और भक्त के विषय में श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं,
प्रभु कही यार मुखे सुने एक बार, कृष्ण नाम से पूछ श्रेष्ठ सबकार। यदि किसी व्यक्ति के मुख से एक बार भी कृष्ण शब्द सुनाई पड़े तो उसे समस्त व्यक्तियों में से श्रेष्ठ व्यक्ति मान लेना चाहिए। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 15.106। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने आगे कहा, अतएव यार मुखी एक कृष्ण नाम से वैष्णव करिहताहार सम्मान। जो कृष्ण के पवित्र नाम के कीर्तन में अभिरुचि रखता है या जो अभ्यास वश कृष्ण के नामों का कीर्तन करना पसंद करता है, उसे वैष्णव के रूप में स्वीकार करना चाहिए और कम से कम मन से तो उसको सम्मान देना ही चाहिए। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 15.1.1.1 हमारे बड़े सौभाग्य है कि हम चैतन्य महाप्रभु से भगवान श्री कृष्ण के दिव्य नामों के विषय में सुन रहे हैं। उसके बाद चैतन्य महाप्रभु ने शुद्ध भक्ति के विषय में बहुत बहुत व्याख्याएं की और बताया कि जब तक इंद्रिय भोग की या परमेश्वर से एकाकार होने की योग शक्तियों को प्राप्त करने की इच्छा रहती तब तक शुद्ध भक्ति की अवस्था प्राप्त करने का प्रश्न ही नहीं उठता। शुद्ध भक्ति का क्या मतलब होता है कि हमारे हृदय से समस्त कामनाएं समाप्त हो जानी चाहिए। अन्य अभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्मा दिनावृतम अनुकूल न कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तम के, और कोई इच्छा नहीं होती, क्योंकि इच्छा जब तक हृदय में है चाहे वो कोई भी हो, एकाकार होने की हो, कुछ भी हो, अगर इच्छा जब तक है तब तक हम शांति प्राप्त नहीं कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकलई अशांत, ये सब अशांत है। और भक्ति करने का या कृष्ण को शरण में जाने का वास्तविक अर्थ क्या है कि हम शांति प्रदान प्राप्त करें, अपने जीवन में शांत प्राप्त करें। और उसकी उसका क्या तरीका है? भगवान कहते हैं ज्ञानम लब्धा परम शांति। और ज्ञान क्या है कि कृष्ण को प्रसन्न करना ही मेरे जीवन का लक्ष्य है। यदि मुझे प्रसन्न होना है तो उसका एकमात्र तरीका कृष्ण को प्रसन्न करके फिर ही हो सकता हूँ। तो फिर क्या करना है? कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। उसकी अपनी कोई कामना नहीं होती कि ऐसा हो तो मैं सुखी हूँ। नहीं, कृष्ण तो जैसा कर जैसे तुम्हें अच्छा लगता है, जो मेरे लिए प्लानिंग की है उसको मैं बस, मुझे खाली ये बताओ कि मुझे क्या करना है आपकी सेवा के लिए। मेरी अपनी इच्छा केवल इतनी है कि मैं तुम्हें प्रसन्न करूं, तो फिर अतएव शांत। इसलिए शांत रहता। और यहाँ से शांत हम पढ़ रहे हैं, यानी कि दिव्य प्रेम की, दिव्य भक्ति की जो पांच अवस्थाएं वहां से हम आज पढ़ेंगे। तो ये पढ़ने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः पदामहयं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्दे अहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवाश्च श्रीरूपं साकृशातम् सहगणरघुनाथवितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादं सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पति गोपेश गोपीककान्त श्रीराधाकान्त नमोऽस्तु ते तप्तकाञ्चनं गारङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुतदेवी प्रणमामि हरि प्रिये वंशाकल्पतरुभयस्य कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैतं गदाधरं शिवासुदि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ग्रंथ श्रीमद्भागवतम महापुराण की जय हो। श्री प्रभुपाद जी बताते हैं कि भक्ति दो प्रकार से की जाती है, प्राथमिक अभ्यास यानी स्टार्ट में क्या होता है अभ्यास वैदिक विधानों के द्वारा और तथा स्वेच्छा भाव से। जब कोई रागानुगा भक्ति भाव की दशा को प्राप्त करता है तो वह आध्यात्मिक आसक्ति अनुभूति प्रेम तथा भक्ति की अनेक उच्चतर अवस्थाओं द्वारा आगे भी प्रगति करता है, क्योंकि वैदिक भक्ति करते 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 उसके बाद जब भगवान के साथ राग लग जाता है, क्योंकि उठते बैठते बस केवल भगवान का ही आपको स्मरण होता है, केवल जीवन जो है ना वो भगवान की सेवा में समर्पित होता है, तो उस आध्यात्मिक आसक्ति अनुभूति और प्रेम की प्रेम तथा भक्ति में उच्चतर अवस्थाएं आती रहती हैं। और श्री प्रभुपाद ने कहा इसे हमने द नेक्टर ऑफ डिवोशन में बताया है, उसका प्रयत्न समझाने का किया है, जो कि भक्ति का सामने सिंधु के ही उसके ही आधार पर रची गई है। और आगे दिव्य प्रेम की अवस्थाओं के विषय में बताए हैं कि दिव्य भक्ति की 5 अवस्थाएं हैं। पहले नंबर पे क्या है, भाव बंधन से मुक्ति के तुरंत बाद, यानी कि भाव बंधन ये संसार की आसक्ति के तुरंत बाद आत्म साक्षात्कार अवस्था यानी शांत अवस्था, कि पता चलता है कि मैं आत्मा हूँ और मेरा कनेक्शन केवल भगवान के साथ है, शांत अवस्था। और उसके बाद सेकंड नंबर पे है, उसके पश्चात भक्त भगवान के अंत ऐश्वर्यों के दिव्य ज्ञान के विकास होने पर दास्य अवस्था में रत हो जाता है। जब पहले तो पता चलता है कि मैं आत्मा हूँ, भगवान का अंश हूँ और मुझे बस शांत रस होता है उसमें। और उसके बाद जब भगवान के ऐश्वर्यों के विषय में पता चलता है, दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो पता चलता है कि मैं उसका अंश हूँ और मेरा कार्य केवल उसकी सेवा करना है। इसलिए फिर वो दासी अवस्था होती है। दासी अवस्था के अधिक विकास से भगवान के साथ भ्रातृ भाव उत्पन्न होता है, जिसके बाद मैत्री भाव या समभाव प्रकट होता है। ये दोनों अवस्थाएं सख्य अवस्था कहलाती है। अब जब ना इस जब हमारा दास्य भाव बहुत ज्यादा अधिक हो जाता है ना, फिर भगवान के साथ प्रेम भी उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि जिसकी हम सेवा करते हैं और जब सेवा में हम दृढ़ होते जाते हैं तो उस स्वामी के साथ हमें कोई ना कोई हमारा रिलेशन भी, क्योंकि प्रेम भी साथ में उत्पन्न हो रहा होता है दास्य के साथ साथ। अब दास यहाँ पर संसार में हम कैसे सेवा करते हैं? सिर्फ एक मकसद होता है कि हम सेवा कर रहे हैं, उसकी बदली में मुझे ये अर्जित करना है, ये धन प्राप्त होगा या फिर ये सैलरी मिलेगी। लेकिन भगवान के भक्तों का ऐसा नहीं होता। भगवान के भक्त प्रेम से सेवा करते हैं और प्रेम से सेवा जब की जाती है तो कोई ना कोई रिलेशन उसके अंदर आता है कि भाई मैं भगवान के साथ भ्रातृ प्रेम या फिर सखा भाव, यानी पहले कौन सा था, शांत भाव था, उसके बाद दास्य, उसके बाद सखा भाव उत्पन्न होता है। इसके बाद वात्सल्य अवस्था आती है, जिसमें भगवान के प्रति माता पिता का प्रेम भाव उपजित होता है। यानी कि सखा भाव में क्या होता है कि वो एकदम फ्रेंड की तरह, लेकिन फिर ऐसे करते करते भगवान की केयर करना शुरू कर देता है भक्त। जैसे माँ कैसे छोटे बच्चे की केयर करता है कि नहीं उसको है ना भूख लगी होगी, उसको मुझे अभी उसको सोलाना है, उसको जगाना है, अभी गर्मी हो रही है तो उसके लिए फैन लगाना है, सर्दियाँ हैं तो उसके लिए स्वीटर लेकर आओ, मतलब फिर हृदय में खुद ब खुद वात्सल्य भाव उत्पन्न होता है। और इसके बाद माधुर्य प्रेम की अवस्था आती है, जिसे ईश्वर प्रेम की सर्वोच्च अवस्था कहते हैं, और ये बहुत ही उत्तम है। ये क्रम से है, मतलब आगे आगे होते जाते हैं तो खुद ब खुद एंड में क्या होता है, ईश्वर से प्रेम की अवस्था, सर्वोच्च अवस्था आती है। यद्यपि उपर्युक्त अवस्थाओं की गुणवत्ता में कोई अंतर नहीं है, यह ईश्वर के प्रति दाम्पत्य प्रेम की अंतिम अवस्था माधुर्य अवस्था कहलाती है। और इसमें क्या होता है, प्रेम का क्या मतलब है? प्रेम का मतलब है तत्सुख सुखित्वम, कि अब मुझे मेरा सुख नहीं दिखता, मेरा सुख उसी में है जिसमें वो सुखी हो। पहले दूसरी अवस्था में क्या होता है, सखा भाव या फिर ना दूसरे कोई भाव होते ना शांत दास्य, उसमें हम अपनी भी कोई ना कोई हमारी इच्छा होती है जो दबी हुई होती है, लेकिन उसको खुश करके हम खुद को खुश करना चाहते हैं। लेकिन इसमें जब माधुरी अवस्था आती है तब तुम खुश हो बस, ये मेरा, उसकी बदली में आप मुझे आश्लेष्य वा पादरतम विनष्टुम अदर्शम, आप मुझे भले मार डालो, भले अपने चरणों से मेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े कर दो, लेकिन मुझे सिर्फ आपको खुश करना है। यदि मुझे दुख देकर भी आप प्रसन्न होते हो तो भी मुझे वो दुख स्वीकार है, वो दुख मुझे बहुत अच्छे लगेंगे जिसकी वजह से मैं आपको प्रसन्न कर सकता हूँ। और ये अंतिम अवस्था है जिसको माधुर्य प्रेम भाव की अवस्था कहते हैं। और प्रेम का मतलब क्या होता है, कृष्णेन इंद्रिय प्रीति वांछा धरे प्रेम नाम, कि बस कृष्ण की इंद्रियों को मैं कैसे तृप्त करूं, बस ये मेरे प्रेम का अवस्था। और ये बहुत उच्च अवस्था है। अभी तो हम अपनी मर्जी से खाते हैं, अपनी मर्जी से सोते हैं, लेकिन फिर हमारा सोना जागना उठना बैठना खाना पीना सब कृष्ण की खुशी के लिए हो जाता है। ये बहुत अंतिम उच्चतम अवस्था है जिसको पहुंच पाना हमारे जैसे साधारण प्राणियों के लिए बहुत कठिन है, लेकिन गोपियां और श्रीमती जी इस माधुर्य अवस्था में भगवान के साथ प्रेम करती थी। और चैतन्य महाप्रभु ने इन समस्त रसों, दिव्य रसों के आस्वादन के विषय में बताया गोस्वामी जी को, और इस प्रकार उन्होंने गोस्वामी को भक्ति के विज्ञान की शिक्षा दी और उन्हें भगवान की दिव्य लीलाओं के संबंध वृंदावन के लुप्त स्थानों की खुदाई करने का कार्यभार सौंपा। बोला कि चैतन्य महाप्रभु जब आए थे आज से 500 साल पहले और भगवान आए थे 5000 साल पहले, तो भगवान की जितनी भी दिव्य लीला स्थलियां थी वो लुप्त हो गई थी। तो गोस्वामी जी को, जितने भी गोस्वामी थे ना षड गोस्वामी, उनको चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिया कि आप जाइए और इन समस्त लुप्त लीला स्थलियों की खोज कीजिए। तत्पश्चात महाप्रभु वाराणसी लौट गए और वहां सन्यासियों का उद्धार किया और रूप गोस्वामी के अग्रज को भी शिक्षा दी। इसकी चर्चा पहले हो चुकी है। अब जो सनातन गोस्वामी को बताया था ना चैतन्य महाप्रभु ने, जो उनको शिक्षा दी थी और उसके विषय में जो हम पहले पढ़ चुके हैं वो बता रहे, वो उसके बाद हुआ था। पहले रूप गोस्वामी के साथ चैतन्य महाप्रभु की भेंट हुई थी और उसके बाद सनातन गोस्वामी, क्योंकि रूप गोस्वामी पहले ही आ गए थे और राजा ने सनातन गोस्वामी को जेल में बंद कर दिया था। फिर किसी तरह से युक्ति करके वो भी आ गए थे और इस तरह से दोनों वृंदावन में जाकर भगवान के पवित्र जो दिव्य स्थान है उन लुप्त हो गए, उन दिव्य स्थानों को खोज रहे थे और साथ साथ दिव्य ग्रंथों की रचना भी कर रहे थे। और आगे बता रहे हैं कि महाप्रभु लिखित रूप से अपने उपदेशों के पाठ श्लोक की महाप्रभु लिखित रूप से अपने उपदेश के 8 श्लोक ही छोड़ गए हैं, सिर्फ 8 श्लोक के रूप में। बाकी चैतन्य महाप्रभु ने अपने जीवन में कोई ग्रंथ नहीं लिखा। उन उपदेशों को जो कि शिक्षाष्टकम के नाम से जाने जाते हैं, इनकी दिव्य संप्रदाय का अन्य साहित्य अनेक उनके प्रधान अनुयायी वृंदावन के 6 गोस्वामियों तथा उनके अनुयायियों द्वारा लिखा गया। मतलब चैतन्य महाप्रभु के विषय में अन्य जितने भी ग्रंथ हैं, जितने जो कुछ भी है वो सब चैतन्य महाप्रभु के अनुयायियों और वृंदावन के 6 गोस्वामी ने लिखा, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने खुद पर्सनली सिर्फ 8 श्लोक ही लिखे। चैतन्य दर्शन का संप्रदाय अन्य किसी संप्रदाय से अधिक संपन्न है और उसे आज का जीवित धर्म माना जाता है, जिसमें विश्व धर्म के रूप में फैलने की शक्ति है। चैतन्य महाप्रभु का जो संप्रदाय का जो ये सब प्रचार है ना, उसको जीवित धर्म क्यों कहा जाता है? क्योंकि कली काले नाम रूप कृष्ण अवतार और चैतन्य महाप्रभु ने केवल नाम के रूप पर ही बल दिया है और इसमें ये विश्व धर्म के रूप में फैलने की शक्ति है। यानी कि अगर चैतन्य महाप्रभु ने कहा था धरती त्याजियत नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार हो बेमोर नाम, तो ये तो समस्त जगहों पर फैलने के, जहाँ पर जितने भी नगर और गांव है वहां पर ये हरिनाम का प्रचार होना आवश्यक है। और ये जो चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय में जितने भी शास्त्र हैं उनका सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि भगवान के पवित्र नामों का संकीर्तन किया जाए। हमें प्रसन्नता है कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज तथा उनके शिष्य जैसे कतिपय उत्साही साधुओं ने इस कार्य को अपने हाथ में लिया। हम उस दिन की उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा कर रहे हैं जब भगवान चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रवर्तित भागवत धर्म या प्रेम धर्म के अच्छे दिन आएंगे। महाप्रभु अब जहाँ विष्णु प्रभुपाद जी इच्छा कर रहे हैं कि मैं वो दिन के लिए उत्सुकता पूर्वक इंतजार कर रहा हूँ, प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि हर जगह पर कृष्ण नाम का प्रचार होगा, कृष्ण प्रेम का प्रचार होगा, हर कोई कृष्ण प्रेम के रस में डूब जाएगा और चैतन्य महाप्रभु के द्वारा जो ये कृष्ण प्रेम की शिक्षा दी हुई है वहाँ हर जगह पर उसका प्रचार होगा। और आगे श्लोक उपाय जी महाप्रभु द्वारा लिखित 8 श्लोक इस प्रकार है, यानी कि जो 8 श्लोक चैतन्य महाप्रभु ने जो 8 श्लोक दिए ना, वो समस्त जितने भी दिव्य शास्त्र हैं, जितने भी वेद हैं, उन सबका सार है। यदि ये 8 श्लोक हमारे जीवन में हम उतार लेते हैं तो इसके अतिरिक्त और कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। यहीं से प्रेम, यहीं से दिव्य भक्ति जो है वो ये पराकाष्ठा है। चैतन्य महाप्रभु ने जो ये 8 श्लोक दिए हैं वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं, तो हमें ये रोजाना सुबह सवेरे मंगला आरती के बाद पढ़ने चाहिए और धीरे 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 इनको अपने जीवन में उतारना है।
क्योंकि जब तक ये 8 शिक्षाएं महाप्रभु की हम अपने जीवन में नहीं उतार लेते हैं, तब तक हम भक्ति की पराकाष्ठा को नहीं पहुंच सकते। पहला है
सीतो तर्पण मार्शनम भव महा दावाग्नि निर्वापणम श्रीय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनन्दं बुद्धिवर्धनम प्रतिपदं पूर्णामृतस्वाधनम सर्वात्मस्नपनम परम विजयति श्री कृष्ण संकीर्तनम।
अर्थात श्री कृष्ण संकीर्तन की परम विजय हो, जो हृदय में एकत्रित वर्षों की धूल को स्वच्छ करता है और बद्ध जीवन तथा बारंबार जन्म एवं मृत्यु की महादावाग्नि को बुझाता है। यह संकीर्तन आंदोलन सारी मानवता के लिए मुख्य वरदान है, क्योंकि यह वरदायक चंद्रमा की किरणों को फैलाता है। यह समस्त दिव्य ज्ञान का जीवन है। यह दिव्य आनंद के सागर को बढ़ाने वाला है और इस अमृत को चखने में हमें समर्थ बनाता है, जिसके लिए हम सदैव लालायित रहते हैं। यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु ने सबसे पहले संकीर्तन के विषय में बताया है कि क्योंकि हमारे हृदय में भगवान के पवित्र नाम, पवित्र प्रेम जो है ना, वो उत्पन्न नहीं हो रहा है। उसकी वजह क्या है कि हमारा हृदय मलिन है और कृष्ण प्रेम प्रदान करने के लिए मैं आया हूँ, लेकिन मैं गंदी जगह पर मैं कृष्ण प्रेम नहीं रख सकता और हृदय इतना मलिन है कि मैं कैसे डाल दूं उसमें कृष्ण प्रेम को। तो कृष्ण अभी हृदय में एक तो मलिनता, ऊपर से काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के होल बने हुए, और प्रेम क्योंकि लिक्विड के रूप में है तो फिर जब डालेंगे चैतन्य महाप्रभु कृपा करके तो भी वो बह जाएगा। तो जब संकीर्तन करते हैं, भगवान के पवित्र नाम का जप करते हैं, तो हृदय का जो बर्तन है ना, हृदय का जो ये दर्पण है ना, उसमें क्या होता है, जितनी भी गंदगी है वो साफ हो जाती है और उसकी पूरी बैलेंस हो जाता है, सारे उसके सुराख बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से चैतन्य महाप्रभु जब उसके अंदर प्रेम डालेंगे ना, तो फिर वो टिक सकेगा और फिर हम उस रस को चखने में समर्थ हो जाएंगे, जिसके लिए सदैव से लालायित है। हम चाहते हैं हम प्रेम का आनंद लें। यहाँ संसार में प्रेम ढूंढते रहते हैं क्योंकि प्रेम ही जीव का एकमात्र लक्ष्य है, लेकिन हमें पता नहीं है कि वो प्रेम कैसे प्राप्त हो, किस तरह से हम अपने प्रेम से संतुष्ट हो सके। तो वो तभी संभव है जब हम संकीर्तन का आनंद लेकर अपने हृदय के इस दर्पण को स्वच्छ करेंगे और महाप्रभु जब उसके अंदर रियल प्रेम डालेंगे, तभी हम समझ सकेंगे कि प्रेम का वास्तविक स्वाद क्या है। और भगवान कहते हैं परम दृष्ट्वा निवर्तते, जब एक बार उस परम हाइयर टेस्ट प्रेम का जो हाइएस्ट टेस्ट पता चल जाएगा ना, फिर संसार की सारी चीजें हमें फीके लगने लगेंगे। जितने भी जायके हैं, जितने भी टेस्ट है ना, वो हमें बिल्कुल टेस्ट लेस लगेंगे और केवल कृष्ण भक्ति ही सबसे ज्यादा हमें इम्पोर्टेंट लगेगी और सबसे ज्यादा जायके वाली लगेगी, तो हम वही कार्य करेंगे। लेकिन उसके लिए सबसे पहले क्या करना है, भगवान के पवित्र नाम का संकीर्तन करना है। आगे भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं नाम नाम कारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्र अर्पिता नियमितः सिम्रणेन काली ईतादर्शी तव कृपा भगवन् ममपि दुर्दैवमीदृशमिहासिनी नानुराग। हे भगवान, एकमात्र आपका
पवित्र नाम ही जीवों का सब प्रकार से कल्याण करने वाला है और इस प्रकार आपके श्री कृष्ण गोविंद जैसे सैकड़ों लाखों नाम हैं। आपने अपने इन नामों में अपनी सारी दिव्य शक्तियां भर दी हैं। इन नामों का उच्चारण करने के लिए कोई निश्चित और कठोर नियम भी नहीं है। हे प्रभु, आपने अपनी कृपा के कारण अपने पावन नामों के कीर्तन द्वारा हमें अत्यंत ही सरलता से अपने पास पहुंचने में समर्थ बना दिया है, किंतु मैं कितना अभागा हूँ कि आपके ऐसे नाम में भी मेरा कोई अनुराग उत्पन्न नहीं हो रहा है। अब चैतन्य महाप्रभु ने पहले तो बताया कि केवल संकीर्तन ही आपके जीवन के लक्ष्य तक आपको पहुंचा सकता है, और आगे बताया ये जब पता चल जाता है फिर भी क्योंकि उत्पन्न नहीं होता, उसकी ओर आकर्षण नहीं होता है, तो रो के भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि मुझे पता चल गया है कि कृष्ण नाम के संकीर्तन के अतिरिक्त और कोई मेरे उद्धार का और कोई तरीका है ही नहीं। फिर मेरी इतनी बदकिस्मती है, इतना दुर्भाग्य है कि उन पवित्र नामों की ओर मेरा आकर्षण नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, उसको छोड़ने के लिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं फिर रो भगवान के सामने जाके गिड़गिड़ाओ कि क्यों नहीं हो रहा है, मेरा इतना दुर्भाग्य क्यों है कि इतना सब कुछ जानने के बाद भी मैं केवल भौतिक चीजों की ओर आकर्षित हो रहा हूँ, और क्योंकि भगवान के नाम और भगवान अभिन्न है और मेरे सामने भगवान का नाम है, भगवान के पवित्र नाम को रटन करने का अवसर प्रदान किया मुझे कृष्ण ने, लेकिन फिर भी उस पवित्र नाम के प्रति मेरा आकर्षण उत्पन्न नहीं हो रहा है, तो कैसे होगा वो आगे चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं। ऋणादपि सुनिचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानीन मानधीना कीर्तनेह सदा हरि। महाप्रभु कहते हैं मनुष्य को चाहिए कि विनीत भाव से अपने को रास्ते में पड़े हुए तृण से भी नीचा मानते हुए भगवान के पवित्र नाम का जप करे, वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु बने, झूठा सम्मान पाने की भावना से रहित हो और अन्यों का सम्मान करने के लिए तैयार हो, ऐसी निर्दोष होने पर ऐसी मनोदशा होने पर मनुष्य भगवान के पवित्र नाम का निरंतर संकीर्तन कर सकता है। तो क्योंकि हृदय नहीं लगता है, उसकी वजह यह है कि हृदय में क्या है, अहंकार है, अभिमान है और अपने आप के सम्मान प्राप्त करने की इच्छा है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जब तक आपका हृदय इस स्टेज पर नहीं पहुंचेगा कि अपने आप को राह में गिरे हुए तिनके से भी कमतर समझना और वृक्ष से भी अधिक सहन शुरू बनना, अपने लिए मान की कोई इच्छा ना करना और अन्य समस्त लोगों का सम्मान करना, जब तक ये चार गुण आपके अंदर नहीं आते ना, तब तक आप भगवान के पवित्र नाम का संकीर्तन नहीं कर सकते हो निरंतर। फिर प्रेम उत्पन्न तभी होगा जब आपका हृदय नरम हो जाएगा, क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं कि भक्ति क्या है, एक लता बीज है और बीज को बोने के लिए आपको जो जगह चाहिए, जो धरती चाहिए, वो नरम होनी चाहिए, ना कि कठोर होनी चाहिए। और नरम कैसे होगी, ये हृदय का जो दर्पण इतना कठोर है उसको नरम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने आप को विनम्र बनाना पड़ेगा, सहिष्णु बनाना पड़ेगा, सम्मान की इच्छा को त्याग कर दूसरों को सम्मान देने का ना अपने अंदर भाव लाना पड़ेगा, तभी हम भगवान के पवित्र नाम का सदैव संकीर्तन कर सकते हैं। आगे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं न धनम न जनम न सौंदर्यम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिरहैतुकी त्वयै। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, मुझे ना तो धन संचित करने की इच्छा है, ना मैं सुंदर स्त्रियां चाहता हूँ, ना मुझे अनेक अनुयायियों की कामना है, मैं तो जन्म जन्मांतर आपकी अहित की भक्ति का ही इच्छुक हूँ। यानी कि जब हृदय से समस्त इच्छाएं समाप्त हो जाएं, अच्छा जन्म प्राप्त करने की, धन प्राप्त करने की या सुंदर स्त्री या कोई भी हृदय में जब तक इच्छा है ना, तब तक भक्ति में उन्नति नहीं होगी। इच्छा केवल एक ही होनी चाहिए कि मैं कैसे अहितुकी भक्ति भगवान की, सदैव भगवान की भक्ति में कैसे निरंतर लगा रहा हूँ। भले मुझे बारंबार जन्म क्यों ना मिले, भले कहीं भी फिर मैं जन्म ले लूं, लेकिन मुझे क्या चाहिए, केवल भगवता भक्ति रही दुखी त्वय, भगवान की भक्ति प्राप्त करने करना ही एकमात्र मेरे जीवन का उद्देश्य है। आगे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, आई नंद तनुज किंकरम पतितं मां विषमे भवाम्बुदौ कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशं विचिन्तय। हे महाराज नंद के सुपुत्र भगवान श्री कृष्ण, मैं आपका नित्य दास हूँ, किंकर हूँ, फिर भी ना जाने किस तरह से मैं जन्म तथा मृत्यु के सागर में गिर गया हूँ। कृपया मुझे इस मृत्यु सागर से निकाल कर अपने चरण कमलों की धूल बना लीजिए। अब यहाँ पर हमें ये रियलाइज हो जाता है, जैसे हम संकीर्तन करते हैं और भगवान के पवित्र नाम की ओर आकर्षित होते हैं और मान सम्मान की इच्छा छोड़ देते हैं, धन और जितनी भी बाकी हृदय की भौतिक इच्छा है ना, वो जब समाप्त हो जाती हैं और भगवान की भक्ति में लिप्त हो जाते, तब हमें ये याद आता है कि मैं तो भगवान का नित्य दास हूँ, फिर मैं इस संसार में क्या कर रहा हूँ। इस संसार में तो मेरी कोई जगह ही नहीं, मेरा स्थान केवल भगवान के चरणों में है, मैं यहाँ पर क्यों हूँ। तो भगवान से गिर गिरा कर प्रार्थना करता है कि पता नहीं कैसे आ गया, मुझे कोई कंप्लेन नहीं है, जैसे आ गया हूँ सो आ गया हूँ, अब कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशं विचिन्तय, अब माफ कर दो, यदि मुझसे जितने भी अपराध हो गए हैं उनको क्षमा कर दो और फिर से अपने चरणों की एक धूलि का एक कण बना दो, ताकि मैं अपने वास्तविक मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपे स्वरूपेण व्यवस्थिता, वास्तविक स्वरूप में वापस आ जाऊं। क्योंकि अब जब तक मैं आपके चरणों की रज नहीं बनूंगा, तब तक मुझे यूं ही भटकना पड़ेगा, मुझे अपने चरणों में ले लो। और आगे भगवान से कहते हैं, नयनं गलदश्रुधारया वदनं गद्गदरुद्धया गिरा पुलकैर्निचितं वपुः कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। हे प्रभु, कब आपके पवित्र नाम का संकीर्तन करते हुए मेरे नेत्र निरंतर प्रवाहमान प्रेम अश्रुओं से सुशोभित होंगे, कब मेरी वाणी रुद्ध हो जाएगी और कब आपका नाम लेते ही मुझे रोमांच होने लगेगा। ये होती है दिव्य प्रेम की विकार। दिव्य प्रेम में क्या होता है, जब भी हम भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करते हैं तो हमारा रोम रोम रोमांचित होने लगता है, नेत्रों से अश्रुधाराएं बहने लगती हैं। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ये हमारे लिए है। महाप्रभु की अवस्था तो कंटिन्यूस होती थी, लेकिन ये चैतन्य महाप्रभु हमारे लिए ये प्रार्थना हमें ही करनी है कि कब ऐसा होगा, वो दिव्य आनंद का एक क्षण भी काश हमारे जीवन में आए जिसमें हम जब भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करें तो नेत्रों से अश्रुधाराएं बहने लगे, कंठ रुद्ध हो जाए और सारे शरीर में रोमांच प्राप्त हो। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से। और अंत आगे आगे के जो दो श्लोक है उसमें चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, युगायितं निमिषेण चक्षुषा तादृशायितं शून्यायितं जगत् सर्वं गोविन्दं विरहेण मे। हे गोविंद, आपके विरह में एक एक पल एक एक युग के समान प्रतीत होता है और नेत्रों से बारिश की तरह अश्रु धाराएं बह रही हैं, नेत्रों में आंसुओं की झड़ी लग गई है और आपकी अनुपस्थिति में मुझे सारा विश्व शून्य सा प्रतीत हो रहा है। आपके अतिरिक्त इस संसार की कोई चीज मुझे रुचिकर नहीं लग रही है, केवल आपको ही मैं स्मरण कर रहा हूँ और आपके वियोग में एक एक पल मुझे एक एक वर्ष वर्षों के समान लग रहा है, युगों के समान लग रहा है। कृपया अब मुझसे और अधिक दूर मत रहिए, मैं नहीं रह सकता हूँ क्योंकि जीना असंभव हो गया है आपके वियोग में। और आगे जब अंतिम दशा होती, यहाँ पर तो भगवान से क्या कहते हैं कि वियोग बर्दाश्त नहीं हो रहा है, लेकिन जब और भी उन्नत हो जाता है तो भक्ति की क्या दशा होती है, भगवान कहते हैं मर्महताम् करोतु वा यथा तथा वा विद्धातुलं पटु मत्प्राणनाथस्तु स एव नापरः मत्प्राणनाथस्तु स ईवनापरः मत्प्राणनाथस्तु स ईवनापरः। मैं अपने प्रभु कृष्ण के अतिरिक्त किसी अन्य को नहीं जानता, वे मेरे लिए हमेशा उसी तरह बने रहेंगे भले ही वे मेरा प्रगाढ़ आलिंगन करें और उस समय उदंडता से पेश आए या मेरे समक्ष उपस्थित ना होकर मेरा हृदय तोड़ दें। वे कुछ भी कर लें, वो सब कुछ करने के लिए स्वतंत्र हैं क्योंकि वे सदा सर्वदा के लिए मेरे आराध्य भगवान हैं। ये है भक्ति की पराकाष्ठा, जिसमें भक्त भगवान से कहता है कि आप क्या कर रहे हो, आप क्या चाहते हो, वो मेरे साथ करो। आपका दिल करता है तो प्रगाढ़ आलिंगन देकर मुझे हृदय से लगा दो, अगर आपका दिल करे तो पैरों से कुचल कर मेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े कर दो। आप जो कुछ चाहो, आप समर्थ हो, मुझे तो केवल आपको प्रसन्न करना है। भले आप मुझे दर्शन देना चाहो तो मेरे समक्ष प्रकट हो जाओ, और यदि दर्शन से वंचित रखना चाहते हो और मुझे दुखी करके तुम्हें प्रसन्नता मिलती है तो मुझे वह भी स्वीकार है, लेकिन आप सदैव मेरे हृदय के प्रिय बने रहोगे। मेरे हृदय में केवल आपको प्रेम करने की जो उत्कंठा है, जो प्रेम की जो भावना है, वो कभी समाप्त नहीं होगी, चाहे आप मुझे उसके लिए क्या भी कर रहे हो, मेरे साथ कैसा भी व्यवहार कर रहे हो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि यदि मेरे किसी भी कार्य से, मेरी किसी भी दशा से तुम्हें प्रसन्नता मिलती है तो यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। तो ये चैतन्य महाप्रभु के 8 शिक्षा अष्टकम थे, जो कि समस्त शास्त्रों का सार थे। तो हमारा परम सौभाग्य है कि हम चैतन्य महाप्रभु के विषय में इतना कुछ भले संक्षिप्त में समझा, संक्षिप्त में पढ़ा, कुछ समझ आया, कुछ बहुत सारी इतनी गूढ़ बातें थी जो ना मैं समझाने के योग्य हूँ और हमारी बुद्धि इतनी तीक्ष्ण नहीं है कि उन सबको समझ सके, लेकिन हमारी ये बहुत बड़ी हमारा नसीब, इतना अच्छा भाग्य है कि भगवान ने एटलीस्ट हमें महाप्रभु के विषय में बात करने का अवसर प्रदान किया। फिर भी यहाँ पर मैं चैतन्य महाप्रभु के जो चिर संगी, जो पंच तत्व हैं, उनके विषय में थोड़ा मैं आप सबको बताना चाहूंगी कि वो नित्य लीला में कौन थे। अब जो चैतन्य महाप्रभु हैं वो तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण हैं, साक्षात ब्रजेंद्र नंदन भगवान हैं, नित्यानंद प्रभु बलराम जी हैं जिनको शंकरषण कहा जाता है, और जो ना त्रेता युग में लक्ष्मण जी के रूप में अवतरित हुए थे। यानी भगवान जब भी आते हैं तो अपना फर्स्ट एक्सपेंशन जो बलराम जी के रूप में, उनको अपने साथ ही रखते हैं। और आगे अद्वैत आचार्य जो है वो किसका अवतार है, महाविष्णु और शिव, इन दोनों का मिलित स्वरूप है। शिव और विष्णु को अद्वैत, यानी ये दोनों दो नहीं एक बनकर आ गए। और गदाधर जी क्या है, वो राधा शक्ति, यानी कि जब चैतन्य महाप्रभु संसार में आए थे
भगवान श्री कृष्ण ने यह निर्णय किया कि मैं महाप्रभु के रूप में सन्यासी बन के संसार में जाऊंगा, तो श्रीमती जी ने कहा मैं भी तो चलूंगी। तो बोले तुम मेरे साथ होगी, बोले तुम्हें तुम्हारे अंदर भले सम्मिलित होंगी लेकिन मैं फिर भी तुम्हें तुम्हारी लीलाएं देखना चाहती हूँ। वास्तव में भक्तों, अंदर होने के बाद जो हम हैं उसका आस्वादन तो हम जब देखते हैं तब होता है ना, देखना। बोला मुझे देखना भी है आपकी सारी लीलाओं को। तो महाप्रभु ने भगवान श्रीमती राधा रानी को कहा ठीक है, इस बार मैं सन्यासी हूँ तो स्त्रियों के साथ नहीं रहूंगा, तुम गदाधर के रूप में, राधा शक्ति जो है वो गदाधर के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत हुई। और उसके बाद श्रीवास ठाकुर जो है वो भक्त का अवतार है, नारद मुनि के अवतार है। और आगे जो हमने राय रामानंद के साथ जो चैतन्य महाप्रभु की वार्ताएं सुनी थी, जिन्होंने भगवान की भक्ति के विषय में चैतन्य महाप्रभु से बहुत सारी अच्छी सी बातें की थी, वो ललिता सखी के अवतार हैं। और स्वरूप दामोदर जो थे, जो अंत तक चैतन्य महाप्रभु के साथ रहते थे, उनका वो विशाखा सखी हैं। और इन सबको पंच तत्व कहा जाता है। अब पंच तत्व मिलकर ही कोई कार्य, जैसे हम उन सबको अगर एक साथ प्रणाम करते हैं तो हमारी भक्ति जो है वो संपन्न होती है। जैसे संसार में क्या होता है, पंच तत्व से ही, पंच महाभूत से ये संसार बनता है, उस तरह इन पंच तत्व से हमारी भक्ति का वृक्ष बनता है। तो इसलिए हम उनको प्रणाम करते हैं और कहते हैं पंच तत्वात्मकम कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतार भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। यानी भक्त स्वरूप कौन थे पंच तत्व में, चैतन्य महाप्रभु भक्त स्वरूप। क्षमा कीजिए, देखो पंच तत्वात्मकम कृष्ण, कृष्ण के पंच तत्व बनाए गए। पहले क्या, भक्त रूपम, भक्त रूप में खुद आए कौन, कृष्ण। भक्त रूप कौन है, चैतन्य महाप्रभु है कौन, साक्षात भगवान श्री कृष्ण। भक्त स्वरूपकम यानी नित्यानंद प्रभु, वो भक्त का स्वरूप थे, साक्षात भक्ति। और भक्तावतार यानी भक्ति का अवतार स्वयं कौन है, अद्वैत आचार्य। भक्त कौन है, भगवान के गदाधर पंडित। और भक्त शक्तिकम यानी कि श्रीवास प्रभु। और इन पंच तत्व को प्रणाम करने से ही हमारी भक्ति में उन्नति होती है, हमारी भक्ति संपन्न होती है। वास्तव में भक्ति स्टार्ट होती है जब हम चैतन्य महाप्रभु इन पंच तत्व को अपने हृदय से प्रणाम करते हैं, उनका आश्रय लेते हैं, तभी हम इस कलयुग में भक्ति कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैतम गदाधरम शिवासदी गौर भक्त वृंदा। यही हमारे जीवन का उद्देश्य हमें प्राप्त कराएगा, यही कृष्ण प्रेम हमें प्राप्त कराएगा। क्योंकि महाप्रभु और उनके परिकर गण के इस संसार में आने का एक ही उद्देश्य है कि समस्त जीवों को जो तड़प रहे हैं, दुखी हैं, उनको कृष्ण प्रेम प्रदान करें। और इन्हीं के आशीर्वाद से कल हम श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम श्लोक का स्वादन करेंगे। कृपया साथ रहिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।